दोनों का दर्द एक सा था। जहां अनुपमा जी अपनी बेटी को खो देने के दर्द से जूझ रही थी, वहीं आरवी अपनी माँ के साए के उसके सर से उठने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहाती रहीं। फिर जब अपने दर्द को आंसुओं में बहाने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो आरवी उनसे दूर हट गईं। उसने निगाहें घुमाकर अपनी जननी माँ की तस्वीर को देखा, फिर अनुपमा जी को नम आंखों से देखते हुए बोली, माँ क्या आप जानती हैं कि मुझे जन्म देने वाले पिता कौन है? कौन है जिसने मेरी माँ को धोखा देकर इतना बड़ा आघात पहुँचाया कि उन्होंने उस गम में अपनी जान गंवा दी? मुझे जानना है माँ कि वो कौन है जिसने मेरी माँ को अंधेरी रात में सड़कों पर भटकने पर मजबूर कर दिया? कौन है वो जो मुझे उस दुनिया में लाकर भूल गया, जिसको ना अपनी पत्नी की परवाह थी और ना ही बेटी की फ़िक्र कि वो कहाँ किस हाल में है? मुझे जानना है उनके बारे में। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती, उन्हें देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उनका कोई वजूद नहीं। मेरे पापा पापा हैं और हमेशा वही रहेंगे, पर मुझे उस इंसान का नाम जानना है जिन्होंने मुझे जन्म तो दिया पर उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। आरवी ने अनुपमा जी के चिंता भरे भाव देखे तो उन्हें सफाई भी दे दी, पर उनके भाव जरा भी नहीं बदले। उन्होंने सख्त भाव से जवाब दिया, उस धोखेबाज आदमी से आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनके बारे में जानने की। आपकी माँ ने आपको ये ज़िंदगी दी है, आपका हक था उनके बारे में जानने का, इसलिए हमने आपको उनके बारे में बता दिया। पर जिस आदमी ने उन्हें धोखा दिया, जिनके वजह से आपकी माँ आपसे दूर चली गई और जिनकी परछाई से आपको दूर रखने के लिए आपकी माँ अंधेरी रात को अपना घर छोड़कर चली आई थी, उनके बारे में कुछ भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पापा वही हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की है, दूसरे किसी आदमी का आपसे कोई संबंध नहीं। आज तो आपने ये सवाल कर लिया, पर दोबारा उस आदमी का जिक्र भी मत कीजिएगा हमारे सामने। अनुपमा जी ने पहली बार उस पर गुस्सा किया था। आरवी कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखने लगी, पर इस गुस्से के पीछे छुपी नाराज़गी से बखूबी समझ रही थी। अनुपमा जी जैसे ही चुप हुईं, आरवी ने उनकी हथेलियों को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, ठीक है माँ, आज के बाद कभी दोबारा कभी उनका जिक्र भी नहीं करूँगी, बस अब आप मुझसे नाराज़ मत हुईये। अनुपमा जी ने उसकी बात सुनी तो उन्हें कुछ सुकून का अनुभव हुआ। उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं बेटा और ना ही कभी हो सकते हैं। अब आप ये सब बातें छोड़िए और अंशु के पास जाइए, वो अकेली है, हम कुछ देर में आते हैं। आरवी ने बड़ी आसानी से उनकी बात मान गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने कदम आगे बढ़ाए, फिर कुछ सोचकर वापस उनके सामने आकर खड़ी हो गई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, माँ मैं वो फ़ोटो ले जाऊँ? उसका इशारा उस तस्वीर की तरफ था। अनुपमा जी ने उसकी बात समझी तो उस फोटो को उठाकर उसको देते हुए बोली, ले जाइए बेटा, आपकी माँ है, हक है आपका। आरवी मुस्कुराकर उनके गले से लग गई और फिर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ आज संडे के दिन भी शान ऑफिस गया था। सुबह जल्दी ही ऑफिस पहुँच गया था वो, और उसके अलावा कार्तिक भी था जो इस वक्त ऑफिस में ही था। शान अपने कैबिन में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ और शान के कम इन कहते ही कार्तिक ने कैबिन में कदम रखा। उसके हाथ में दो फाइलें थीं। शान के चेहरे पर इस वक्त गंभीर भाव थे। कार्तिक उसके पास चला आया, फिर अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर कल रात को ये फाइल आ गई थी, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट है, बस अब आप बता दीजिए कि आगे क्या करना है। शान ने उसकी बात सुनी तो उसके हाथ से फाइल ले लिया और उसके पन्ने पलटते हुए कुटिल मुस्कान लबों पर फैलाते हुए बोला, आगे जो करना है वो मैं खुद करने वाला हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शतरंज की बिसात तो बिछाई जा ही चुकी है, अब बस सही वक्त पर सही वार करना है और अपने दुश्मन को शिकस्त मैं खुद दूंगा। उसके चेहरे पर वो बेबसी और लाचारी देखने में खुद जाऊंगा। शान जैसे जैसे पेपर्स पलटता जा रहा था, उसकी मुस्कान और ज़्यादा जहरीली होती जा रही थी। कार्तिक अब भी वही खड़ा शान को देख रहा था। फाइल के हर पेज को बारीकी से पढ़ने के बाद शान ने निगाहें उठाई तो कार्तिक अब भी वही खड़ा था। उसको अब भी वहां देख शान ने भौं चकाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, अभी तक गए नहीं तुम, कुछ और कहना चाहते हो? कार्तिक ने कुछ परेशानी भरे लहजे में कहा, यस सर, एक और इन्फॉर्मेशन मिली है निया मैडम के बारे में। कहो क्या नया पता चला है उसके बारे में, शायद ये बात हमारे कुछ काम आ सके। शान के बोलने की इजाज़त मिलते ही कार्तिक ने कहना शुरू कर दिया, दो दिन पहले निया मैडम को डॉक्टर नंदिनी के हॉस्पिटल में जाते देखा गया था। वो मुंबई की काफ़ी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं और निया मैडम उनसे हॉस्पिटल आर्ट्स के बाद मिलने गई थी। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही शान के भाव एकदम से बदल गए। उसने तुरंत ही सवाल किया, ये पता चला कि वो वहाँ क्यों गई थी? यस सर, डॉक्टर नंदिनी तो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, पर उनकी असिस्टेंट को पैसों का लालच दिया तो उसने ये फाइल ला कर दी। कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ी दूसरी फाइल उसके तरफ बढ़ा दी। शान ने शक भरी निगाहों से उस फाइल को देखा और जैसे ही उसे लेकर खोला, कार्तिक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, निया मैडम प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाने के सिलसिले में वो उन डॉक्टर से मिली थी। इस फाइल में सारी डिटेल है, आप देख लीजिएगा।
कार्तिक अब उससे इजाजत लेकर वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर शान के दिमाग में अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगी थीं। कानों में कुछ शब्द शीशे की तरह चुभ रहे थे और चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। शान ने उस फाइल की हर डिटेल को बारीकी से पढ़ा, फिर नफरत भरी निगाहें उन रिपोर्ट पर डालते हुए कहा, वेल डन निया, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली, आज भी अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, किसी भी हद तक गिरने को राजी हो। एक वो वक्त था जब अर्जुन की जिंदगी में शामिल होकर नाम और पैसा कमाने के तुमने उस इंसान को धोखा दिया था जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था, जिससे तुम छुपकर शादी कर चुकी थी और उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। तब भी तुम्हारे लिए धन दौलत, पैसा और कामयाबी इतनी मायने रखती थी कि तुमने ना सिर्फ उसके दिल को तोड़ा बल्कि उससे जुड़ा हर रिश्ता खत्म कर दिया। अपने स्वार्थ में अंधी होकर तुम इतनी नीचे गिर गई कि तुमने उस बच्चे को मारने की कोशिश की जो दुनिया में आया तक नहीं था। आज भी तुम वही खेल खेल रही हो। तब अर्जुन के लिए तुमने किसी की सच्ची मोहब्बत को ठुकराया था और जब तुम्हें मेरे साथ रहना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है तो तुम अर्जुन की पीठ में छुरा घोंपने को भी तैयार हो, मुझसे मतलब का रिश्ता जोड़ने के लिए, उससे जुड़े हर रिश्ते को खत्म करने को तैयार हो, यहां तक कि एक बार फिर अपने स्वार्थ में अंधी होकर तुम एक मासूम की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रही। लेकिन इस बार नहीं, ये खेल मेरा बिछाया है और इसमें कब क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारे मतलब और खुदगर्जी के लिए मैं किसी मासूम की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। तुम्हारा खेल अब मैं खत्म करूंगा, बस कुछ दिन और सुकून से जी लो, उसके बाद तुम्हारा चैन तो क्या, तुमसे तुम्हारी जिंदगी भी छीन लूंगा मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों को छूने का, वो भी दूसरों के बल पर। अब देखो कैसे मैं तुम्हें हर्फ से फर्श पर लाकर पटकता हूँ।
शान के दिमाग में अब कुछ बहुत बड़ा चल रहा था जिससे सभी अनजान थे। उसने उस फाइल को अपने लोकर में सेफली रख लिया, दूसरी फाइल भी साथ ही थी और अब वो उनका क्या करने वाला था ये सिर्फ वही जानता था। टू बी कंटिन्यूड।